गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति में आकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। यही धीर पुरुष का व्यावहारिक लक्षण है। भागवत 7:6-3 में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध का 6वां अध्याय श्लोक संख्या 3, प्रहलाद जी क्या कहते हैं, सुखम इंद्रियकम दैत्याम देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवान यथा दुःखम यत्नतः। अर्थात हे दैत्य बालको, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार हमारे ना चाहने पर भी सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के चलते रहते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध संघर्ष करने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय और शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, तो इसका जो समय है इसमें खराब ना करो। क्या कि सुखों को प्राप्त किया जाए या दुखों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनना होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को जागृत करना है। अब भागवत 3:5-2 में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, तीसरा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 2, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, किंतु ना तो उसे तृप्ति मिलती है ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। उल्टी ऐसे कार्यों से उसके दुखों में वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए कृपा करके हमें इस विषय में निर्देश दें कि असली सुख के लिए क्या किया जाए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी रहना चाहता है, किंतु प्रकृति इतनी क्रूर है कि वह उसकी योजना में आग लगा देती है। भौतिक प्रकृति का यही काम है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, ना ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति ही मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन सुख तथा दुख दोनों प्रकार की स्थितियों को सहन करें। अब हम अर्जुन के उन दो नामों पर विचार करेंगे जो इस श्लोक में आए हैं। अर्जुन के दो नाम, पहला है कौंतेय और दूसरा भारत। हाँ, तो पहला है कौंतेय। श्री भगवान ने अर्जुन को कौंतेय नाम से संबोधित करके ये कहना चाहा है कि अर्जुन, तुम जिन कुंती देवी के पुत्र हो उनके जीवन में भी अनेक बार सुख और दुख के परिवर्तन आए हैं। यदि हम कुंती महारानी के जीवन पर विचार करें तो देखते हैं कि सर्वप्रथम उनका जन्म मथुरा में हुआ, वसुदेव की बड़ी बहन के रूप में और सूरसेन की पुत्री के रूप में हुआ, तथा वे अत्यंत सुखपूर्वक रहीं। फिर इसी बचपन की अवस्था में उनके पिता शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को ये कन्या गोद में दे दी। इस परिवर्तन से उन्हें कुछ दुख अवश्य ही हुआ होगा। फिर दुर्वासा मुनि के वरदान से जब कुंती देवी ने सूर्य देवता का आवाहन किया, उस समय सूर्य ने कुंती को कर्ण नामक एक पुत्र प्रदान कर दिया। अब कुंती के समक्ष बहुत बड़ी समस्या थी कि इस बालक को समाज किस प्रकार स्वीकार करेगा। हाँ, तो कुंती देवी के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि समाज इस बालक को किस प्रकार स्वीकार करेगा तथा सूर्य देव की इस घटना पर कौन विश्वास करेगा। अगर कुंती देवी बताएं कि सूर्य देव से ये बालक पैदा हुआ है तो कौन विश्वास करेगा। लोग क्या कहेंगे कि लड़की बदमाश है, कहती सूर्य देवता आए थे। सूर्य देवता आकाश में है, जो इतने ऊपर सूर्य देवता हैं वो आएंगे इस लड़की के पास, कौन विश्वास करेगा। जब कुंती ने एक लकड़ी के संदूक में बंद कर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया, तो उस बालक की रक्षा के विषय में कुंती को दिन रात चिंता बनी रही। बाद में जब कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ तो कुछ समय के लिए उन्हें सुख के दिन प्राप्त हुए, परंतु जैसा कि ये भौतिक संसार अनित्य तथा परिवर्तनशील है, कुंती देवी के सुख के दिन दुख के दिनों में परिणत हो गए। कैसे? अभी तक वे किसी पुत्र की मां भी नहीं बनी थी कि किंदिम मुनि के सांप के कारण महाराज पांडु को जीवन भर वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। कैसे, पता है क्यों किंदिम मुनि ने सांप क्यों दिया महाराज पांडु को? किसी को पता है? क्या? तो किंदिम मुनि जो है हरण का रूप धारण करके अपनी पत्नी से सहवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने हरण समझ करके ही बाण मारा, तो किंदिम मुनि जो है उस समय अपने रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी क्योंकि हम हरण के रूप में थे, लेकिन जिस अवस्था में तुमने मारा है हमको, है ना, तो उसका परिणाम यह होगा कि जब तुम अपनी पत्नी से सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो किंदिम मुनि के सांप के कारण महाराज पांडु को जीवन भर वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। अपने पति के दुख में साथ देने के लिए कुंती देवी भी पांडु के साथ वन में गई। कुंती देवी चाहती तो सुखपूर्वक महल में रहती, लेकिन अपने पति के दुख में साथ देने के लिए वे भी वन में आई। ऐसे दुख के समय में उन्हें फिर से सुख के कुछ दिन प्राप्त हुए जब उन्होंने देवताओं के द्वारा तीन पुत्रों को जन्म दिया और माद्री ने दो पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद ये सुख के दिन फिर दुख में परिणत हो गए जब महाराज पांडु की अचानक मृत्यु हो गई। इस दुख के ऊपर और अधिक दुख आया जब कुंती ने देखा कि उनके पितृविहीन पुत्रों को दुर्योधन और धृतराष्ट्र अपनी कूटनीति के द्वारा मार डालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर लाक्षाग्रह की आग से तथा अपने अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा करके कुंती देवी अनेक वर्षों तक छिपकर तथा भिक्षा मांग कर रही। बाद में जब पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ तथा पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त हुआ, तब कुंती देवी को कुछ सुख के दिन प्राप्त हुए, परंतु फिर दुर्योधन ने जुए की कपट चाल से उनका राज्य छीन कर तथा द्रौपदी का अपमान करके कुंती को पुनः दुख के समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कुंती देवी के जीवन में अनेक बार सुख तथा दुख के परिवर्तन आए, परंतु उनको सहन करती हुई वे सदा अपने कर्तव्य में अविचल रही। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कौंतेय कहकर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस प्रकार कुंती देवी ने सुख और दुख को महत्व न देकर श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने व्यक्तिगत सुख तथा दुख का विचार किए बिना श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए। अब अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? भारत भगवान ने अर्जुन को कहा है। श्री भगवान अर्जुन को भारत कहकर उन भरतवंशी राजाओं की याद दिला रहे हैं जिन्होंने सभी प्रकार की सुविधाओं में तथा सभी प्रकार की कठिनाइयों में श्री कृष्ण का चिंतन किया तथा शास्त्र साधु तथा आचार्यों के द्वारा दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन किया है। अर्जुन ने जिस राजा भरत के वंश में जन्म लिया है वे राजा दुष्यंत के पुत्र थे तथा अत्यंत पराक्रमी थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है। जब वे बच्चे थे, कौन कौन बच्चे थे आप लोग नहीं सुन रहे? भरत महाराज, जब भरत महाराज बच्चे थे उस समय वे बड़े बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते। छोटा बच्चा बड़े बड़े शेरों को वेग से दबा करके बांध लेता था और उन्हें घसीटते रहते थे। शेरों को बांध करके घसीटते थे, अजगरों के दांत तोड़ देते हैं और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने बस में कर लेते थे। छोटा सा बच्चा 100-100 सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। देखो, एक छोटा सा बच्चा 100-100 सिंहों को एक साथ पकड़ करके घसीटता था। ऐसे पराक्रमी भरत के वंश में अर्जुन उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान का कहना है कि अर्जुन के पराक्रम का तभी पता लगेगा जब अर्जुन सुख तथा दुख के वेगों को सहन करके श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर से संबंधित हैं और भारत कहने से उनके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है, इसके फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। तो ये पूरा लेख हमने पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सहन करो, सुख दुख को सहन करो, तो पिछले श्लोक में भगवान ने किस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया था जिसकी व्याख्या इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने किस व्यक्ति के बारे में बताया था, कैसा व्यक्ति? पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का वर्णन किया था, उसी की व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं भगवान, है ना? तो पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का एक लक्षण बताया था, किस प्रकार से? पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का वर्णन बताया था किस रूप में? कि कुछ बताया था कि वो नहीं, वो उसमें ऐसा नहीं है। इसमें भगवान ने कुछ बताई ऐसी बात की जो उसमें होती है। हाँ, समझे? मतलब पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ निषेध के रूप में बताया था कि उस धीर पुरुष में ये चीज नहीं होती है। उससे वो भ्रमित नहीं होता है शरीर के जो ना परिवर्तन से, धीर पुरुष है वो भ्रमित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, नहीं होता है ना। और इस श्लोक में जो भगवान धीर पुरुष का वर्णन किया है वो किस रूप में किया है? कि धीर पुरुष ये करता है, है ना, क्या वो सहन करता है कि नहीं, सुख दुख को सहन करता है, है ना। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है, दुख को सहन करने की बात अगर भगवान कह रहे हैं तो ठीक है कि दुख को सहन करो, ठीक है, दुखों में विचलित ना हो। लेकिन भगवान तो दोनों को कह रहे हैं, सुख और दुख दोनों को सहन करो, इसका क्या मतलब है? सुखों को सहन करने के लिए भगवान कह रहे हैं, है ना, क्योंकि सुख के वेग में भी व्यक्ति क्या भजन नहीं करता। आप समझे? जो बहुत सुखी होता है वो भजन छोड़ देता है, है कि नहीं? तो सुख को सहन करो। जैसे मान लीजिए कि आपको 1,00,000 रुपए अचानक मिल जाए, तो फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा भजन, है कि नहीं है? ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक करोड़ रुपया दे दिया जाए तो सब उठ के चले जाएंगे, है कि नहीं? तो सुख को सहन करो है? मंदिर में आना बंद हो जाएगा, एक एक करोड़ रुपया दे दिया जाए सबको तो मंदिर में आना सबका बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो सुख को सहन करो। सुख में व्यक्ति क्या सोचता है कि अब तो मैं सुखी हो गया हूं, अब क्या जरूरत है भगवान की है? अब क्या जरूरत है नियमों का पालन करने की, है कि नहीं? अब तो जो ना मस्ती मारो, है कि नहीं? तो सुखों में व्यक्ति जो है ना सोचता है कि ये सुख के दिन है, इनको जो है इनको भोग लो, है ना? ये जो सुख आया है इसको मत छोड़ो, है कि नहीं? तो व्यक्ति जो है दुखों में तो जो है ना भजन छोड़ देता है भगवान का, है ना, कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सुख में भी भगवान का भजन छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि तो सुखों को पकड़ना चाहता है, सुखों को भोगना चाहता है ना। कबीर का दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। दुख में सबको याद करते हैं भगवान को, ये सुख में नहीं याद करते हैं। क्यों? सुख में सोचते हैं भगवान को क्या जरूरत है याद करने की, है ना? अब तो मैं सुखी हूँ, क्या जरूरत है? भगवान को दूर से नमस्कार करता है, भगवान आपकी कोई जरूरत नहीं मुझे, नमस्कार, है ना? और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना? लेकिन इसमें भी विचार करने की जरूरत है। दुख में सुमिरन सब करें, नहीं सब लोग नहीं करते, दुख में सुमिरन भी सब लोग नहीं करते हैं, दुख में भी सब लोग नहीं सुमिरन करते, आपको पता है? सब लोग नहीं करते सुमिरन दुख में। पुण्यात्मा, चार प्रकार के पुण्यात्मा है, भगवान ने कहा मेरा भजन करते हैं। सातवें अध्याय का सोलहवां श्लोक भगवान कहते हैं चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतं अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसु। तो जो पहला, जो कम पुण्यात्मा है, तो वो दुख में भगवान को याद करता है, है ना? आप समझे? वो भी पुण्यात्मा होता है जो दुख में भगवान को याद करता है, है ना? फिर उससे ज्यादा अगर पुण्यात्मा होता है तो दुखों में तो भगवान को याद करता ही है, आर्तो जिज्ञासुर, लेकिन वैसे भी वो भगवान के बारे में जिज्ञासा भी करता है, कुछ जानने की कोशिश करता है भगवान के बारे में, है ना? तो ज्यादा पुण्यात्मा है वो। और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो दुखों में भगवान को याद करता है और जिज्ञासा भी करता है भगवान के बारे में, लेकिन अर्थार्थी कुछ सांसारिक कामना से भी भगवान का भजन करता है, है ना? तो ज्यादा पुण्यात्मा है। और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो तीनों बातें के ऊपर, तीनों बातों के साथ साथ और क्या है, ज्ञानी, मतलब उसको जो है ना ज्ञान रहता है, भौतिक संसार में कष्ट है, उन कष्टों से छूटना चाहता है, मतलब कर्म बंधन से छूटना चाहता है, ज्यादा पुण्यात्मा है। तो पुण्यात्मा जितना ज्यादा व्यक्ति होता जाता है उतना ज्यादा वो भगवान का भजन करता है। और फिर भगवान ने कहा है कि चार प्रकार के दुष्कृति हैं, जो पापात्मा है वो मेरा भजन नहीं करते, अगर उनको दुख भी मिलेगा तो दुख में भी वो भगवान का भजन नहीं करें, भगवान को गाली देंगे, भगवान को दोष लगाएंगे, है कि नहीं? ईश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, ठीक है ना? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ नराधम माया हृत ज्ञान और आश्रय भाव आश्रित, ते भी क्रम से अधिक अधिक पापी है। मूढ़ है, मूढ़ क्या है, बहुत मूर्ख है, गधे की तरह काम करता रहता है, और जो है अपने को इसी में ही सुखी समझता है कि मेरे पास समय नहीं है भगवान का भजन करने का, है ना। और उससे ज्यादा पापी होता है नराधम। नराधम क्या है कि वो आगे के लिए छोड़ता है, टालता है भगवान के भजन को और टालता रहता है, हाँ, तो वो ज्यादा पापी है। और माया हृत ज्ञान ज्यादा, उससे भी ज्यादा पापात्मा कैसा होता है कि वो भगवान के भजन को क्या मानता है कि ये तो पिछड़ापन है, जो पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, है ना, पुराने ढर्रे के लोग हैं, ये तो भगवान का भजन करते हैं। अभी तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है। तो ज्यादा पापी जिसको अपने वैज्ञानिक उन्नति का बड़ा घमंड है, अपनी शिक्षा का बड़ा घमंड है, माया हृत ज्ञान, उससे भी ज्यादा पापी आसुरी भाव आश्रित होते हैं। आसुरी भाव मतलब बिल्कुल विरोध करते हैं, विरोध भगवान के भजन का विरोध करते हैं, तो आसुरी भाव आश्रित है। तो चार प्रकार के पापी हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। तो जैसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में भी सब लोग स्मरण नहीं करते, ठीक है ना। भगवान ने कहा है कि वो पुण्य आत्मा है, उदार है, जो भगवान का भजन करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, अब इस श्लोक में जो मात्रा शब्द है, मात्रा का मतलब इंद्रियां, तो हमने चर्चा की थी कि इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जाता है। हाँ, जो इंद्रियां हैं ये हमेशा मात्रा नापती रहती हैं कि कितना सुख मिल रहा है मुझे, है ना, कितना दुख मिल रहा है। तो जो जीवात्मा है ये पांच इंद्रियों के द्वारा नापता रहता है कि किस इंद्रिय के द्वारा सुख की कितनी मात्रा मिल रही है मुझे, किस इंद्रिय के द्वारा दुख की कितनी मात्रा मिल रही है मुझे, है। तो जो जीवात्मा इस प्रकार से नापता रहता है सुख और दुख की मात्रा को इंद्रियों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंद्रियाराम। इंद्रियाराम उसको बोलते हैं, है ना। और इंद्रियाराम के विपरीत शब्द क्या है, आत्माराम, है ना। जो आत्माराम व्यक्ति होता है वो अपने आत्मा के द्वारा सुख दुख कितना प्राप्त हो रहा है उसको नापता रहता है। और आत्मा के द्वारा सुख वो कैसे नापता है कि मुझे आत्मा के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से, कृष्ण की जितनी वो सेवा में लगा हुआ है उतना अधिक मानता है कि मुझे आत्मा के द्वारा सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कृष्ण को आप सुखी करते हो तो आपको सुख मिलता है, है कि नहीं। और जितना अधिक आप माया की सेवा करते हो उतना अधिक आप को दुख मिलता है। तो जो आत्मानंद व्यक्ति है वो जानता है कि वो जितनी कृष्ण की सेवा में लगा है उतना अधिक वो सुखी है, और जितना माया की सेवा में लगा है उतना वो दुखी है, है ना। इस प्रकार से आत्मा के द्वारा सुख और दुख की को नापता है उसको क्या कहते हैं, उसको आत्माराम कहते हैं। फिर हमने प्रहलाद महाराज की चर्चा की कि भागवत के सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को कुछ बात बताई सुख और दुख के बारे में, वो क्या है। प्रहलाद महाराज ने बताया कि सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, देहधारियों को देह के योग से जो इंद्रियों के सुख हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, है ना। देह के योग से जो है सुख प्राप्त हो जाते हैं इंद्रियों के, जिस प्रकार का जो है ना देह प्राप्त होता है उसको, तो उस प्रकार के इंद्रियों के सुख भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। यथा दुखम यतनता, जैसे दुख बिना किसी प्रयास के प्राप्त होता है उसी प्रकार से सुख भी बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है। जो भी इंद्रियों के सुख हैं व्यक्ति पाना चाहता है तो उसको उस प्रकार का देह प्राप्त होता है। अगर हम किसी प्रकार का इंद्रिय सुख पाना चाहते हैं, इस देह में नहीं हो सकता, तो हमारी इस उस इच्छा के अनुसार हमको वैसा देह प्राप्त होगा जिससे कि मैं उस प्रकार का इंद्रिय भोग प्राप्त करूं। तो वो देह प्राप्त हो गया उस प्रकार का, तो उस प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाता है। तो बिना प्रयत्न के जैसे इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं, है ना, जैसे इंद्रियों से उसी प्रकार बिना प्रयत्न के प्राप्त होते हैं जिस प्रकार से दुख बिना प्रयत्न के प्राप्त होते हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों के सुख के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है कुछ ऊंचे लाभ के लिए, है ना। अगर हमारे अंदर कुछ इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, तो इस जीवन में अगर वो पूरी नहीं हुई तो अगले जीवन में हो जाएगी, उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाएगा तो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कम से कम ये जीवन तो मैं भगवान की सेवा में लगा दूं, है ना। तो व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। 11 फरवरी 1975 को प्रभुपाद ने मैक्सिको में प्रवचन दिया और कहा कि जब हम बच्चे होते हैं निर्दोष तो हमारी कोई बुरी आदतें नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और गलत संग करते हैं तो हमारे अंदर गलत आदतें भी आ जाती हैं। तो ये सब जो गलत आदतें हैं उनको त्यागने के लिए हमें साधुओं का संग करना होगा, तब हम इन्हें त्याग सकते हैं। इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। इसका मतलब है कि जितने भी अनावश्यक और गलत आते हैं उनको त्यागना। 12 फरवरी 1968 को प्रभुपाद ने महापुरुष को पत्र लिखा। गुरु और कृष्ण ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। जैसे रेलगाड़ी दो पटरियों पर आगे बढ़ती है, गुरु और कृष्ण ये दो उसी प्रकार की पटरियां जैसे हैं, और इन दोनों की सेवा साथ साथ करनी चाहिए। कृष्ण सहायता करते हैं व्यक्ति की कि उसे प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो, और जो प्रामाणिक गुरु है वो सहायता करते हैं व्यक्ति की कि वो कृष्ण को समझे। अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु नहीं प्राप्त करता है तो कैसे वो कृष्ण को समझ पाएगा। आप कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं गुरु के बिना, अथवा केवल गुरु की सेवा करें बिना कृष्ण की सेवा किए, तो इन दोनों की सेवा एक साथ करना जरूरी है। 13 फरवरी 1968 को प्रभुपाद ने गुरुदास को पत्र लिखा कि जो भक्त है वो अपने कष्टों को हमेशा ऐसा ही मानता है कि भगवान की कृपा से बहुत कम हो गए हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा कष्ट भोगना था। जो भी व्यक्ति भगवान की कृपा के सिद्धांत को स्वीकार करता है कष्टों की स्थिति में और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता जाता है, तो ये कहा जाता है कि निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में जाएगा। 14 फरवरी 1969 को प्रभुपाद ने प्रहलादानंद को पत्र लिखा कि हम कृष्ण के विस्मरण की स्थिति में फंसी हुई आत्माएं हैं, और कृष्ण आपको अवसर दे रहे हैं कि इस कीर्तन की विधि द्वारा उनके साथ जो भूला हुआ संबंध है उसको स्थापित करें, तो इसका पूरा लाभ उठाओ और सुखी बनो और आनंद प्राप्त करो। 15 फरवरी 1970 को प्रभुपाद ने डॉक्टर स्टाल को पत्र लिखा कि भरा हुआ धान और थोथा धान एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो व्यक्ति जानता है कि भरे हुए धान से कैसे चावल निकाला जाए वो बुद्धिमान है, परंतु जो व्यक्ति थोथे धान को कूटता रहता है ये सोच करके कि उसमें से कुछ परिणाम प्राप्त होगा वो केवल व्यर्थ परिश्रम कर रहा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है परंतु भगवान कृष्ण जो वेदों के परम लक्ष्य हैं उनको नहीं जानता है वो केवल अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहा है।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे